पृष्ठ संख्या 176, शीत युद्ध, तेहरान, याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच यूरोप से मुक्त कराए गए देशों के भविष्य से संबंधित अनेक प्रश्नों पर सहमति हुई थी। पोट्सडम सम्मेलन में स्थापित विदेश मंत्रियों की परिषद ने धुरी शक्तियों और उनके सहयोगी देशों से शांति संधियों की शर्तों के विषय में बातचीत की थी। 1947 तक इटली, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और फिनलैंड के साथ समझौते हो गए और संधि पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ऑस्ट्रिया के साथ 1955 की संधि के बाद मित्र राष्ट्रों ने उस पर से अपना कब्जा उठा लिया, लेकिन जर्मनी और जापान के प्रश्न पर कोई सहमति नहीं हो पाई। सोवियत आपत्ति के बावजूद पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जर्मनी को लेकर जो मतभेद थे, वे संयुक्त राज्य के नेतृत्व में पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच झगड़े का एक बड़ा कारण बन गए। युद्ध के शीघ्र बाद युद्धकालीन गठबंधन ढीला पड़ने लगा और शीत युद्ध या शस्त्र सज्जित शांति का काल आरंभ हो गया। शीत युद्ध का आरंभ, उद्भव। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि शीत युद्ध का उद्भव 1917 में उस समय हुआ जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कई पश्चिमी देशों ने क्रांति के बाद स्थापित हुई नई सोवियत सरकार को उखाड़ने के लिए अपनी अपनी सेनाएं रूस में भेजी, लेकिन वहां विदेशी हस्तक्षेप विफल हो गया और 1920 में वह पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद अनेक पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद सोवियत संघ को मान्यता देने तथा उसके साथ कूटनीतिक संबंध बनाने में उन्हें कई वर्ष लग गए। जर्मनी में फांसीवाद की विजय के बाद पश्चिमी देशों को यह आशा थी कि जर्मनी सोवियत संघ पर अपनी आक्रामक कार्रवाइयां करना जारी रखेगा, इसलिए उन्होंने धुरी शक्तियों के तुष्टीकरण की नीति का पालन किया और आक्रामक कार्रवाई रोकने के लिए सोवियत संघ से कोई गठबंधन करने से इनकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण के बाद सोवियत ब्रिटिश संयुक्त राज्य गठबंधन स्थापित हुआ, जिसके कारण जर्मनी और अन्य धुरी शक्तियां पराजित हो गई, लेकिन युद्ध के समय भी यह गठबंधन तनाव मुक्त नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सैनिक कार्रवाइयां संयुक्त रूप से एक एकीकृत कमान के अधीन कर रहे थे। वे सभी निर्णय किसी मित्र देश से पूछे बिना आपस में ही कर लिया करते थे। विशेष रूप से यह बात दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्न पर सामने आई। सोवियत संघ को महसूस हो रहा था कि दूसरा मोर्चा खोलने में जानबूझकर देरी की जा रही है। यूरोप के मामलों में, उदाहरण के लिए पोलैंड के भविष्य के बारे में, युद्ध के आरंभ से ही मतभेद उभरने लगे थे। यद्यपि उनमें से अधिकांश मतभेद तेहरान, याल्टा और पोट्सडम में दूर हो गए थे, लेकिन पश्चिमी देशों में सोवियत संघ के प्रति संदेह बना रहा। जर्मनी के खिलाफ पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की विजय से पश्चिमी देश परेशान हो उठे थे। सोवियत संघ की सेना की बर्लिन और बढ़त से, खास तौर से ब्रिटेन की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई। यद्यपि बर्लिन जर्मनी के उस हिस्से में पड़ता था जो समझौते के अनुसार सोवियत संघ को मुक्त कराना था, चर्चिल ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पर इस बात के लिए जोर डाला कि वह मित्र सेनाओं एवं राष्ट्रों की सेनाओं के कमांडर जनरल आइजनहावर को लाइवजिंग की बजाय बर्लिन की ओर आगे बढ़ने के लिए कहे। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें, पूर्वी यूरोप की घटनाओं ने पश्चिमी देशों में साम्यवाद के प्रति पहले से बसे उस भय को फिर से जगा दिया जिससे वह युद्ध से पहले ही ग्रस्त थे। याल्टा में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने स्वतंत्र कराए गए यूरोप पर एक घोषणा जारी की थी। इस घोषणा के अनुसार तीनों मित्र शक्तियों को यूरोप के मुक्त कराए गए देशों को स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना में सहायता प्रदान करनी थी। आरंभ में सोवियत सेनाओं द्वारा मुक्त कराए गए देशों में संविदा सरकारें स्थापित की गई, जिनमें अन्यों के अतिरिक्त साम्यवादी दल भी शामिल थे। लेकिन 3 वर्षों के अंदर इन सभी देशों की सरकारों में से अन्य दलों को उखाड़ फेंका गया और इन पर साम्यवादियों तथा उनके सहयोगी दलों का एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया। पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया की सरकारों में साम्यवादियों के प्रभुत्व ने विशेष रूप से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को भड़का दिया, जिसे वे सोवियत संघ द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्र चुनावों के संबंध में दिए गए वचन का उल्लंघन मानते थे। 1946 में पोलैंड की कामचलाऊ सरकार में फूट पड़ गई, जिसमें पोलिश सरकार के लंदन स्थित सोवियत विरोधी पोलिश नेता भी शामिल थे। बाद में हुए चुनावों में उन दो दलों को लगभग 90% स्थान प्राप्त हुए, जिनके पारस्परिक विलय से साम्यवादी दल की स्थापना हुई, जिसे पोलिश संयुक्त श्रमिक दल, पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी कहा गया। मुख्य विरोधी दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं हुए थे और उनके हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चेकोस्लोवाकिया में और मई 1946 में एक संविदा सरकार की स्थापना हुई। सरकार में साम्यवादी एवं अन्य दलों के नेता शामिल थे। फरवरी 1948 में साम्यवादियों ने सरकार के पुनर्गठन की मांग की, क्योंकि उनका आरोप था कि सरकार में शामिल कुछ दल फांसीवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। पुनर्गठन किया गया तो आरोप लगाया गया कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडुअर्ड वेनेस ने सोवियत संघ के दबाव में आकर सरकार का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद साम्यवादी प्रभुत्व संपन्न सरकार सत्तारूढ़ हुई। बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी में भी ऐसी ही घटनाएं हुई। यूगोस्लाविया और अल्बानिया में भी वही साम्यवादी सत्तारूढ़ हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। इस प्रकार यूरोप के 7 देशों में ऐसी सरकारें सत्ता में आई जिनमें साम्यवादी दलों का बोलबाला था, और अब सोवियत संघ साम्यवादी दल द्वारा शासित एकमात्र देश नहीं रह गया था। इस घटनाक्रम के ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष रूप से चिंतित हुए, जो इसे स्वतंत्र विश्व के लिए खतरा मान रहे थे। जर्मनी का घटनाक्रम। जर्मनी के घटनाक्रम से सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के मतभेद अधिक गहरे हो गए। जर्मनी को 4 अधिकृत क्षेत्रों में बांट दिया गया था, जिन पर क्रमशः सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण था। पोट्सडम सम्मेलन में जर्मनी की कल्पना एक ही आर्थिक क्षेत्र के रूप में की गई थी, जिसकी एक सामान्य मुद्रा प्रणाली होती, लेकिन धीरे धीरे जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अधिकृत क्षेत्र शामिल हुए। पश्चिमी भाग में आए और सोवियत संघ अधिकृत क्षेत्र जर्मनी का दूसरा हिस्सा अर्थात पूर्वी भाग बना। उस समय जर्मनी की आर्थिक एकता भंग हो गई, जब पश्चिमी भाग ने पूर्वी भाग को औद्योगिक यंत्र भेजना बंद कर दिया और उधर पूर्वी भाग ने पश्चिमी भाग को कृषि उत्पादन देना बंद कर दिया। दोनों भागों में एक दूसरे से भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियां पाई जाने लगी। पूर्वी भाग में बड़ी बड़ी जमींदारियों को जबरदस्ती छीनकर किसानों में बांट दिया गया और अनेक उद्योगों तथा खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यहाँ फांसीवाद के सत्तारूढ़ होने के समय से ही देश निकाला भोग रहे जर्मन साम्यवादियों को तथा उन दलों और मंडलियों को बढ़ावा दिया गया जो साम्यवादियों के साथ गठबंधन करने को तैयार थे। पश्चिमी हिस्से में एक पूंजीवाद प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी आर्थिक सहायता प्रदान की तथा यहाँ साम्यवादियों और सोवियत संघ का विरोध करने वाले दलों और मंडलियों का बोलबाला हो गया। पश्चिमी भाग में साम्यवाद और सोवियत संघ के भय पर आधारित नीतियों का पालन किया जाने लगा। 1947 तक जर्मनी दो बिल्कुल अलग-अलग आर्थिक एवं राजनीतिक भागों में बट गया। बाद में दो स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना करके इस विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया गया। यूनान का गृह युद्ध। शीत युद्ध को जन्म देने वाली एक अन्य घटना यूनान ग्रीस का गृह युद्ध था। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि यूनान में साम्यवादियों ने फांसीवादियों के प्रतिरोध में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन यूनान को भेजी गई ब्रिटिश सेना राजा के शासन को पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहती थी, जिसे वापस बुला लिया गया था। इससे यूनान में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में साम्यवादियों के खिलाफ 10,000 ब्रिटिश सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन 1947 के आरंभ में ब्रिटेन ने यूनान से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया। उसने संयुक्त राज्य को सूचित किया कि अब वह गृह युद्ध में यूनान की सरकार को समर्थन देने का बोझ नहीं उठा सकता। यदि ब्रिटेन ने यूनान की सरकार को वित्तीय और सैनिक सहायता देना बंद कर दिया होता, तो गृह युद्ध में साम्यवादियों की जीत लगभग निश्चित थी। संयुक्त राज्य की सरकार ने गृह युद्ध में यूनान की सरकार को समर्थन देने का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। ऐसा माना जा रहा था कि तुर्की को भी सोवियत संघ से खतरा है, अतः संयुक्त राज्य ने उसे समर्थन देना शुरू कर दिया। ट्रूमेन सिद्धांत। सामान्यता माना जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से 47 के वर्षों में हुई। इस युद्ध में पहली गोली विंस्टन चर्चिल ने दागी। अब वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसूरी राज्य में स्थित फुलटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति ट्रूमेन की उपस्थिति में दिए गए एक व्याख्यान में उसने कहा कि बाल्टिक क्षेत्र में अस्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रिस्ट तक यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। फौलादी दीवार से चर्चिल का तात्पर्य था कि यूरोप का विभाजन कर दिया गया है, जिसमें एक और सोवियत संघ के नियंत्रण में आने वाले देश शामिल थे और दूसरी ओर शेष यूरोप के देश थे। इस विभाजन का तात्पर्य था कि फौलादी दीवार के पीछे रहने वाले देश सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ गए थे और कठोर सेंसर तथा नियंत्रण प्रणाली में जी रहे थे। चर्चिल ने सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन की भी अपील की। यूनान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने के अमेरिकी निर्णय को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रूमेन ने कांग्रेस से यूनान की आर्थिक एवं सैनिक सहायता के लिए 40 करोड़ की मांग करते हुए एक नीति वक्तव्य जारी किया, जिसमें ट्रूमेन सिद्धांत कहा गया। अपने भाषण में उसने कहा, मैं समझता हूँ कि जिन स्वतंत्र जन समाजों को सशस्त्र अल्पसंख्यक समूहों या बाहरी दबावों के द्वारा गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके प्रतिरोध को समर्थन देना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। ट्रूमेन के सिद्धांत में साम्यवाद को स्वतंत्र दुनिया के लिए खतरा बताया गया था, जिसे स्वतंत्र दुनिया का अगुवा होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के किसी भी हिस्से में सफल होने देना नहीं चाहता था। हर क्रांति को सोवियत विस्तारवाद का परिणाम समझा गया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सैनिक शक्ति के बल पर कुचलना आवश्यक था। यह सिद्धांत अगले लगभग 3 दशकों तक संयुक्त राज्य की विदेश नीति का आधार बना रहा और दुनिया में होने वाली प्रत्येक लड़ाई को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी संघर्ष के रूप में देखा गया।